एक संस्था के रूप में सिमोन विवाह का विरोध करती हैं। शुरू में उनका मानना था, विवाह जहां स्त्री को पुरुष का गुलाम बनाता है, वहीं उसके घर की साम्राज्ञी भी। किंचित व्यंग के साथ वे लिखती हैं कि विवाह अन्य सब करियरों से अधिक आकर्षक, आसान और सुविधाजनक है। विवाह के प्रसंग में वे फ्रायड को उद्धृत करते हुए कहती हैं, पति प्रेमी पुरुष का एक पूरक तो हो सकता है, किंतु वह प्रेमी नहीं हो सकता। उनके अनुसार विवाह की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वह सुख के विषय में किसी प्रकार का आश्वासन नहीं देता। विवाह में स्त्री की विषम और हीन स्थिति पर उनकी टिप्पणी है, यह तो विवाह प्रणाली ही है जो स्त्री को प्रार्थी का रूप देती है, और यह प्रणाली उसे जोंक की तरह रक्त पिपासु जीव बताती है। वे अंत तक विवाह के विरुद्ध रहीं, क्योंकि एक शादीशुदा स्त्री के रूप में समाज के साथ स्त्री के वैसे ही संबंध नहीं रह जाते जैसे कि एक गैर शादीशुदा स्त्री के होते हैं। जहाँ भी अवसर मिलता है, विवाह को वे औरतों के लिए बहुत खतरनाक बताती और घोषित करती हैं। स्त्री मुक्ति के प्रसंग में स्वयं अपने पर टिप्पणी करते हुए वे कहती हैं, मेरे पास स्त्री का शरीर है, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी खुशकिस्मत रही हूँ। मैं ऐसी चीज़ों से मुक्त रही जो औरत को गुलाम बनाती हैं, जैसे पत्नी और मातृत्व की परंपरागत भूमिकाएं। स्त्री के पास खोने को कुछ नहीं है। पृष्ठ 44। इसी तरह वे परिवार नामक संस्था के भी विरुद्ध हैं और उसके स्थान पर कम्यून या उसी प्रकार के किसी दूसरे ढांचे की सिफारिश करती हैं जिसमें स्त्री समानता के साथ रह सके। स्त्री की मुक्ति कैसे उसका अपना निजी उद्यम है, इसका उदाहरण वे अपने जीवन से देती हैं। सार्थ से उनके अंतरंग संबंधों के कारण जब नारीवादी आंदोलन में उन्हें शंका और संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा था, तब भी वे अपना स्वतंत्र और स्वायत्त जीवन जी रही थीं। साथ रहने की समझ और आपसी करार के बीच भी वे वस्तुतः उस रूप में कभी एक साथ नहीं रहे जिसे स्थायी रूप में एक छत के नीचे रहना कहा जाता है। बाहर जाने पर भी होटल में वे प्रायः ही अलग कमरों में रहते थे, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए। आर्थिक दृष्टि से ऐसे अवसर भी आए जब सिमोन ने सार्थ से आर्थिक सहायता स्वीकार की, लेकिन ऐसा खास तौर से भी तभी हुआ जब अपने अध्यापक की नौकरी छोड़कर उन्होंने अपना लेखन किया। आर्थिक दृष्टि से वे कभी सार्थ पर निर्भर नहीं रहीं। अनेक बार ऐसी ही स्थिति में उन्होंने सार्थ की भी आर्थिक सहायता की। यात्राओं और होटलों का खर्च वे समान रूप से उठाते थे और प्रायः ही यह हिसाब नहीं रखते थे कि किसका कम या ज़्यादा खर्च हुआ। इसी सोच के आधार पर सार्थ को स्वतंत्रता देकर वे अपनी स्वतंत्रता बनाए रख सकें। अपने अमरीकी प्रेमी नेल्सन एलग्रेन के प्रति अपनी गहरी आसक्ति और लगाव की स्वीकृति में उन्हें कहीं कोई असुविधा नहीं होती। सार्थ के अनेक प्रेम संबंधों को भी इसी तरह उन्होंने बहुत खुले मन से झेला, एकाध उस अपवाद को छोड़कर जब उन्हें उसके एकाधिकारवाद में दूसरे संबंधों के प्रति गहरी उपेक्षा या तानाशाही दिखाई दी। घरेलू पत्नियों के अलगाव और नौकरी पेशा स्त्रियों के अकेलेपन में वे एक बुनियादी अंतर देखती हैं और मानती हैं कि उसे अंततः इन दो में से एक का चुनाव करना ही होगा। आर्थिक दृष्टि से स्त्री की आत्मनिर्भरता पर उनकी टिप्पणी है, नौकरी कोई रामबाण नहीं है, लेकिन बावजूद इसके मुक्ति की बुनियादी शर्त है। वही पृष्ठ 51। पिछले दो दशक हिंदी में नारी विमर्श से अधिक उसकी चर्चा के वर्ष रहे हैं। सिमोन द बोवुआर, केट मिलेट, जर्मेन ग्रेयर आदि लेखिकाओं जैसे गंभीर और व्यवस्थित काम हिंदी में लगभग नहीं हुए। हिंदी में नारीवाद की वैचारिकी का मूल स्रोत वस्तुतः यही लेखिकाएं हैं। हिंदी में प्रभा खेतान की पुस्तकों को छोड़कर नारीवाद की अधिकतर चर्चा छिटपुट टिप्पणियों, वक्तव्यों और पत्रकारी लेखों के रूप में ही हुई हैं। इन लेखिकाओं में प्रभा खेतान, मैत्रेयी पुष्पा, लता शर्मा, मृणाल पांडे, नासिरा शर्मा, अनामिका कात्यायनी, मनीषा आदि का उल्लेख सहज ही किया जा सकता है। जैसा कि कहा गया, इनमें प्रभा खेतान का काम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने सिमोन द बोवुआर की द सेकेंड सेक्स का अनुवाद तो किया ही, सार्थ पर अपने अध्ययन और शोध की प्रक्रिया में उन्होंने यूरोप के अस्तित्ववादी दर्शन और नारीवादी आंदोलन का भी गंभीर अध्ययन किया। इस संबंध में उनकी दो पुस्तकें उपनिवेश में स्त्री और बाजार के बीच बाजार के खिलाफ खास तौर से ध्यान आकृष्ट करती हैं। जब वे किसी राजनीतिक उपनिवेश के रूपक में ढालकर स्त्री को देखती और परिभाषित करती हैं, स्पष्ट ही वे सिमोन के स्त्री पुरुष के संबंध की गोरे और काले के संबंधों वाली व्याख्या से अप्रभावित नहीं हैं। अपनी स्वतंत्रता के लिए स्त्री का संघर्ष वस्तुतः एक राष्ट्रवादी क्रांति के लिए किए जाने वाले संघर्ष से बहुत भिन्न नहीं है। इस संघर्ष में उसे अनेक स्थापित सामाजिक संस्थाओं और वर्चस्वशील विचार सरणियों से टकराना होता है। पितृसत्ता, यौन शुचिता, परिवार और आर्थिक या आत्मनिर्भरता की पुराने मिथक उसने तोड़े और नए गढ़े हैं। इन स्थापित सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं की स्त्री विरोधी प्रकृति पर टिप्पणी करते हुए वो लिखती हैं, मगर पितृसत्तात्मक समाज की स्त्री विरोधी परंपराओं का आयाम पूरी तरह विशिष्ट है। ये परंपराएं स्त्री को घर सौंपती हैं, बच्चों का भरण पोषण सौंपती हैं, मानवता के नाम पर वृद्ध और बीमारों के लिए उससे निःशुल्क सेवा लेती हैं और बदले में उसके द्वारा की गई सेवाओं का महिमा मंडन कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेती हैं। स्त्री भूखी है या मर रही है, इसकी चिंता किसी को नहीं होती। उपनिवेश में स्त्री, पृष्ठ 14। इस स्थिति में निहित सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक हर क्षेत्र में निर्णय के अधिकार से उसे वंचित करके उस पर तरह तरह की जिम्मेदारी लादकर उस दायित्व को निभाने की अपेक्षा की जाती है। प्रभा खेतान मानती है कि भूमंडलीकरण ने स्त्री को जितना लाभ पहुंचाया है उससे अधिक हानि पहुंचाई है। उसने स्त्री को सब कहीं एक आकर्षक उत्पाद में बदला है। भ्रूण हत्या और बालिका शिशु की उपेक्षा का अनुपात तेजी से बढ़ा है। भारत जैसे समाज में स्त्री की आर्थिक स्वतंत्रता ही काफ़ी नहीं है। आर्थिक परिवर्तन के संदर्भ में उसे राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन की जरूरत है। वे स्पष्ट लिखती हैं, अमानवीय विकास के प्रतिमानों को खारिज करना और जनोन्मुख नजरिए को विकसित करना नारीवाद का पहला उद्देश्य होना चाहिए। स्त्री के संदर्भ में पूर्ववादी दृष्टि से उसके महिमा मंडन को वे जितना गलत समझती हैं, पश्चिम के पुरुष चिंतकों की स्त्री विरोधी दृष्टि की भी वे वैसी ही स्पष्ट आलोचना करती हैं। वेद वेदांत से लेकर कार्ल मार्क्स की स्त्री चिंता तक सभी कहीं वे दुराग्रहों की टोह लेती हैं। इस स्त्री विरोधी परिप्रेक्ष्य में वे लेखिकाओं की निष्क्रियता पर भी हैरत जताती हैं। पुरुष संस्कृत के विकल्प में नारीवाद को वे निरंतर और विकासमान प्रक्रिया के रूप में देखती और स्थापित करती हैं। उत्तर आधुनिक और भूमंडलीकरण के दौर में स्त्री की भूमिका पर प्रभा खेतान गंभीरता से विचार करती हैं। गैर पश्चिमी संस्कृतियों पर भूमंडलीकरण के मारक प्रभावों के बीच वे उसकी अनिवार्यता की बात करती हैं। स्त्री के संदर्भ में संस्कृति के भूमंडलीय प्रभाव को आंकने के लिए वे एक इंटर कॉन्टिनेंटल होटल के रूपक की सिफारिश करती हैं। शासकीय शासन एक नए अंतर्राष्ट्रीय समाज के प्रकटीकरण पर जोर देती हुई एक ऐसे भूमंडलीय समाज की बात करती हैं जिसमें बेहिसाब धन बहता है, और उस समाज में वे स्त्री की भूमिका का सवाल उठाती हैं। इस समाज में पूंजी का तेज बहाव देखने को मिलता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महानगरों को वित्तीय राजधानी में बदल रहा है। इस भूमंडलीय संस्कृति की अच्छाई बुराई पर प्रभा खेतान पर्याप्त वस्तुनिष्ठ टिप्पणी करती हैं। इस टकराहट का लाभकारी पक्ष है कि पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलता है, मगर खराब पक्ष है कि इससे समाज में मौन पर्यटन, भ्रष्टाचार तथा अन्य बुराइयाँ फैलती हैं। बाजार के बीच बाजार के खिलाफ पृष्ठ 15। किसी भी देश के हर महानगर में 5 सितारा होटलों में संस्कृति का संजाल फैला हुआ है, जिनमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों की होटल श्रृंखला होटलों में यात्रियों को घर जैसे आराम का आश्वासन देती हैं। देशज संस्कृति की भिन्नता विरोधी या भूमंडलीय एकल संस्कृति है, मोनोकल्चर। इसमें सब कहीं एक रूपीकरण पर जोर होता है। एक से उत्पाद फास्ट फूड से लेकर परिधान और जूतों तक। प्रभा खेतान भूमंडलीकरण को सिरे से नकारती नहीं है, वे भरसक उसके वस्तुनिष्ठ आकलन की कोशिश करती हैं। वे उसे एक ऐसी बिजली की संख्या देती हैं जो घर को रोशन करती है और उसमें आग भी लगा सकती है। इस खुली अर्थव्यवस्था में वे इस ओर से उदासीन नहीं हैं कि विकास अनिवार्य रूप में कल्याणकारी योजनाओं से संबद्ध है और भूमंडलीकरण के नाम पर जिस तरह दक्षता और प्रतियोगिता की मांग होती है तथा विकास के नए मानक तैयार किए जाते हैं, उससे गरीबी और बेरोजगारी और बढ़ती है। एशियाई संस्कृति के संदर्भ में प्रभा खेतान परिवार नामक संस्था पर पुनर्विचार करते हुए स्त्री की कीमत पर उसके बने रहने की सच्चाई तक पहुंचती हैं। देह व्यापार का व्यापक संजाल इस ओर संकेत करता है कि अधिकांश एशियाई पुरुष पत्नी के प्रति सेक्स संबंधों में निष्ठावान नहीं होते। इस स्थिति पर टिप्पणी करते हुए वे लिखती हैं, सेक्स एक ऐसा मनोरंजन है जिसका लुत्फ पुरुष और सिर्फ पुरुष ही दाम्पत्य जीवन की सीमाओं से बाहर जाकर उठा सकता है। अनेक एशियाई समाजों में पत्नियों द्वारा इसे नज़रअंदाज किया जाता है, क्योंकि पत्नी एक तो आर्थिक रूप से पूरी तरह पुरुष पर निर्भर होती है और अधिकांश एशियाई औरतों के विचार में सेक्स संबंध ही विवाह नहीं है। वे इसे एक संस्कार मानती हैं और धूर्त पुरुष इसका फायदा उठाते हैं। प्रभा खेतान देह व्यापार के अनेक रूपों की चर्चा करती हैं जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस भूमंडलीकरण की देन है। नव धनाढ्यता की तर्ज पर वे नव दरिद्रीकरण और बाल वेश्यावृत्ति को इसके अनिवार्य परिणाम के रूप में रेखांकित करती हैं, लेकिन सिर्फ निर्धनता को ही वे इसका कारण नहीं मानती। वे इसे सामाजिक विषमता और असुरक्षा से जोड़कर देखती हैं। इस प्रसंग में मानवीय गरिमा का सवाल उठाते हुए वे लिखती हैं, मूल प्रश्न मानवीय गरिमा और सम्मान का है एवं सभी के लिए यह चिंता का विषय होना चाहिए कि क्या स्त्री की पहचान उसकी योनि पर चिपकी कीमत से ही होती है। वही पृष्ठ 169। प्रभा खेतान नारीवादी आंदोलन की सीमाओं की ओर भी संकेत करती हैं। वे इस आंदोलन में बढ़ते हुए वर्गभेद और कैरियरिज्म के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करती हैं। अपने ही घर में घरेलू नौकरानियों का शोषण करते हुए स्त्रियों का ध्यान नारीवाद की ओर प्रायः नहीं जाता। भारत में आज भी मुख्य धारा में स्त्रियों की संख्या नगण्य है। वे अब नारीवाद के शत्रु के रूप में पुरुष या पितृसत्तात्मक व्यवस्था को उतना महत्व नहीं देती, क्योंकि इसका सामना करना नारीवाद को आ गया है। वे कारपोरेट पूंजी को आज एक बड़ी समस्या के रूप में देखती और आंकती हैं, क्योंकि नारीवादी स्त्रियां उसे सही परिप्रेक्ष्य में समझ नहीं सकी हैं। आज पुरुष उस आंदोलन में वैसे विरोधी के रूप में नहीं देखा जाता जैसा वह पिछली शताब्दी में कभी 70 के दशक में देखा जाता था। उपभोक्तावाद स्त्री को जींस में बदल देगा, इस ओर उसे सचेत रहना है। अपने लिए वह कैसा जीवन चाहती है यह अंततः उसे ही तय करना है। एक निष्क्रिय उपभोक्ता या सृजनशील व्यक्ति के बीच का चुनाव ही उसके साथ पूरे नारीवादी आंदोलन का भविष्य तय करेगा। वे देहवाद के बढ़ते आकर्षण और मांग की ओर भी संकेत करती हैं, जो मछली के चारे की तरह दुनिया के बाजार में फेंका जा रहा है। वे संजीदगी से सवाल करती हैं, इससे स्त्री को क्या हासिल होगा? प्रभा खेतान पूंजी को उपभोग की संस्कृति से जोड़कर देखती हैं। उपभोक्ता संस्कृति और स्थानीय संस्कृति के बीच बढ़ते टकराव को रोक पाना मुश्किल है। उपभोक्ता संस्कृति से बचाव की प्रक्रिया में ही अपनी जड़ों की ओर वापसी की प्रवृत्ति जोर पकड़ती है। इससे समाज में रूढ़िवादी ताकतों को बल मिलता है। विभिन्न देशों और समाजों में ये ताकतें हिंदुत्व, इस्लाम तथा ईसाइयत के रूप में सामने आती हैं। इस प्रक्रिया में सब कहीं अल्पसंख्यकों के प्रति अनुदारता बढ़ती है। इससे सामाजिकता और सहिष्णुता प्रभावित होती है। एक बहुलतावादी रणनीति बनाकर ही नारीवादी आंदोलन को सही दिशा भी दी जा सकती है। मैत्रेयी पुष्पा पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री और पुरुष के बीच के संबंध को बोबुआर और केट मिलेट की तरह ही काले और गोरे या फिर सेवक और स्वामी के रूप में परिभाषित करती हैं। श्लील अश्लील की बहस में वे श्लील को जीवन के सामने रखकर देखती हैं। पुरुष के वर्चस्व वाले समाज पर टिप्पणी करते हुए वे लिखती हैं, जब कोई वर्चस्व इतना शक्तिशाली हो जाता है कि व्यक्ति की आकांक्षाएं, सपने, जिंदगी पिसने लगे, तो फिर राजनीति के बंधन अपना अर्थ खोने लगते हैं। अश्लीलता की रक्षा के लिए मैं जिंदगी को तबाह कर दूं, ऐसा दबाव मानने से इनकार करती हूं। अपने लेखन में मेरी सबसे पहली अपेक्षा रहती है जीवन के पक्ष में खड़े होना, जीवन को गतिशीलता के साथ रहे। सुनो मालिक सुनो, भूमिका पृष्ठ 5। स्वतंत्र और स्वाधीन स्त्री के पक्ष में खड़े होकर एक ओर यदि वे मनुस्मृति को खारिज करती हैं, वहीं अनेक पौराणिक एवं मिथकीय पात्रों की नई व्याख्या का प्रयास भी करती हैं। सीता, शूर्पणखा, द्रौपदी आदि के प्रचलित मिथकीय स्वरूप से भिन्न एक स्वाधीन और विवेकपूर्ण स्त्री की दृष्टि से वे उनके निर्णयों की समीक्षा करती हैं। अपने साहित्य की तरह अपनी वैचारिकी में भी वे सब कहीं स्त्री और प्रेम के पक्ष में खड़े होकर उसकी लड़ाई लड़ती हैं। इसी आधार पर वे तस्लीमा नसीन का बचाव भी करती हैं। धर्म, संस्कृति, समाज, साहित्य, राजनीति, फिल्म और मीडिया आदि के व्यापक परिप्रेक्ष्य में वे बदलती हुई स्त्री का आकलन करती हैं। सुनो मालिक सुनो में जो खुली खिड़कियाँ की अपेक्षा अधिक व्यवस्थित ढंग से लिखी पुस्तक है, वे कन्या, परिणीता आदि के साथ अन्य रूपों में भी स्त्री के अस्तित्व और प्रकृति को समझने का उद्यम करती हैं। पुरुष के वर्चस्व वाली सामाजिक संरचना स्त्री को योनि मात्र के रूप में देखती है। अपनी निरंकुशता से स्त्री को व्यभिचार के हाशिए पर डालकर उसके साथ वह कैसा सुलूक करती है, इसका खुलासा भी वे विस्तार पूर्वक करती हैं। कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं का वे स्त्री दृष्टि से पुनर्पाठ भी करती हैं। मैत्रेयी पुष्पा जब कन्या के रूप में स्त्री की स्थिति पर विचार करती हैं, वे दहेज नहीं पिता की संपत्ति में उसके हिस्से का समर्थन करती हैं। मनुस्मृति के उस श्लोक को वे अमान्य करती हैं जिसके अनुसार स्त्री कभी स्वाधीन नहीं होती। बचपन, युवा और वृद्धावस्था तक वह क्रमशः पिता, पति और पुत्र के अधीन ही रखी जाती है। स्त्री के संरक्षण और सुरक्षा से अधिक वे उसके हक की बात करती हैं। अपनी जिंदगी के बारे में अपने फैसले का हक पाकर ही वह एक विवेकी और स्वाधीन जीव हो सकती है। निर्धन, अनाथ और बदनाम पेशा लड़कियों के सरकारी, गैर सरकारी सामूहिक विवाहों की हकीकत वे समझती हैं और सवाल उठाती हैं। इंसाफ की बात कहिए और बताइए, क्या विवाह से लड़की को आर्थिक आत्मनिर्भरता मिल जाती है? इन अनाथ और बेसहारा लड़कियों के आत्मनिर्भर हो पाने की दृष्टि से वे विवाह के बदले नौकरी दिए जाने पर बल देती हैं। आत्मनिर्भर हो जाने पर विवाह तो वे स्वयं कर लेती और अपने विवेक से शायद बेहतर ही करती। इस प्रसंग में उनकी निष्कर्षात्मक टिप्पणी है, मेरी राय में सम्मानजनक जीवन शादी से नहीं सार्थक श्रम से मिलता है। परिणीता के रूप में स्त्री के स्वाधीन जीवन को नकार कर उसे सिर्फ देह में रेड्यूस कर दिए जाने का वे तीव्र विरोध करती हैं, जिसमें गर्भधारण से लेकर गर्भपात तक किसी में उसकी अपनी इच्छा का कोई महत्व नहीं होता। जो समाज स्त्री को योनि मात्र समझकर उसके साथ अभद्र और अश्लील व्यवहार करता है, उसके लिए जागृत स्त्री शक्ति के रूप में वे नागपुर की स्त्रियों द्वारा अक्कू यादव की सामूहिक प्रतिरोध की घटना को याद करती हैं। इसी से वे इस निष्कर्ष तक पहुँची हैं कि अपनी रक्षा स्त्री स्वयं ही कर सकती है। तेज तर्रार और दामन में दाग वाली औरतों को प्रायः ही समाज मर्दमार और साली आवारा औरतें वाली छवि में पेश करता है, जो खुली और छुट्टा घूमती हैं और औरतों को बिगाड़ती हैं। वे स्वयं ही देह को सर्वस्व मानकर उनका मूल्यांकन करते हैं और फिर स्वयं ही उन पर निर्णय का अधिकार घोषित करते हैं। स्त्री चिंतन में स्त्री को प्रायः दलित के सामने रखकर उसकी व्याख्या की जाती है, लेकिन दलित स्त्री के संदर्भ में मैत्रेयी पुष्पा का आकलन दलित आंदोलन के अंतर विरोधों पर एक तीखी टिप्पणी की तरह पढ़ा जा सकता है। वे लिखती हैं, वे दलित स्त्रियों को लूटे जाने, बलात्कृत होने पर तो ज्वालामुखी से फटते हैं, उनके अशिक्षित और चेतना विहीन रखे जाने पर गुरेज तक नहीं करते। वे रास्तों में पहरेदारी का इंतजाम कर सकते हैं, अपने टोले से ज़्यादा लड़कियों को स्कूल भेजने की मुहिम नहीं चलाते, हिंदू धर्म से घृणा करते हैं, जाये लगते हैं, मनुस्मृति को जला डालना चाहते हैं, गुस्सा वाजिब है, लेकिन अपनी स्त्रियों के लिए पतिव्रत धर्म लागू करते हैं और तब उनका सारा आंदोलन हास्यास्पद हो जाता है। हद तो तब होती है जब वे अपनी औरतों की इच्छा तक नहीं जानना चाहते हैं। नए जमाने के दलित हैं ये, उसी परिपाटी के अनुयायी जिसकी धज्जियाँ उड़ाई थी। वह सुरक्षा कवच देना चाहते हैं जो दासों को स्वामियों से मिला था। कि उनका कोई दूसरा न ले जाए। मैत्रेयी पुष्पा के लिए पुरुष सत्ता ईश्वरीय सत्ता की तरह सर्वव्यापी है। संसद में स्त्रियों के लिए 33% आरक्षण का हश्र वे देख चुकी हैं और ग्राम पंचायतों में स्त्री के नाम पर उनके पतियों के कब्जे का सच भी उनसे छिपा नहीं है। पंचायती स्त्रियों का दिल्ली मेला और उसमें अंग्रेजी का वर्चस्व उन्हें आहत करता है और अपने क्षोभ को वे छिपाती भी नहीं हैं। संघर्ष की राह कठिन और लंबी भले ही हो, लेकिन वे शायद उस चीनी कहावत में विश्वास करती हैं जिसके अनुसार 1000 मील का सफर भी पहले कदम से शुरू होता है। स्त्री चिंता के फैलते हुए क्षितिज पर टिप्पणी करते हुए लता शर्मा लिखती हैं, आज स्त्रियों को हर चीज से काम है। अग्निसर्प जैसे प्रक्षेपण शस्त्र से लेकर मानव क्लोन तक, गुजरात के दंगों से लेकर कन्या भ्रूण तक हत्या तक, स्त्री हर गतिविधि का केंद्र भी है, माध्यम भी और लक्ष्य भी। भला वह कैसे तटस्थ रह सकती है। सुंदर दिखने और स्वादिष्ट पकवान बनाने का युग गया, सार्थक हस्तक्षेप का युग आ गया। औरत अपने लिए, पृष्ठ 25। लता शर्मा एक ओर यदि मानती हैं कि दमित अतीत और कुंठित वर्तमान पर सुखद भविष्य का भवन खड़ा नहीं हो सकता, वही वे स्त्री की देश चिंता को पर्याप्त महत्व देती हैं। उनकी स्त्री चिंता में शांति और सांवरी जैसी वे किशोरियां भी हैं जो सातवीं में आते आते अचानक स्कूल आना बंद कर देती हैं। भाई की तुलना में बहुत जमीन होने पर भी मानो उन्हें माँ की मदद के नाम पर घर गृहस्थी के काम में झोंक दिया जाता है या फिर 35 वर्ष के किसी दुहाजू को ब्याह दिया जाता है बाप द्वारा लिए गए 50,000 रुपये के एवज में। मन न लगने पर जब वह ससुराल से भाग आती हैं तो पति लठैतों के साथ आकर जबरदस्ती उसे वापस ले जाता है। जाहिर है कि विकास के सारे उपलब्ध और प्रचारित आंकड़ों के बीच ऐसी लड़कियों के लिए दिल्ली अभी दूर है। पिछड़े क्षेत्रों में ही नहीं, शहरों में खाते पीते परिवारों में भी लड़की और लड़के के बीच भारी अंतर का प्रभाव लड़कियों पर पड़े बिना नहीं रह सकता। गांवों में शिक्षा का अभाव है, अक्षय तृतीया पर बड़े पैमाने पर बाल विवाहों का आयोजन होता है। इन सामाजिक बुराइयों के प्रति चेतना जगाकर आत्मरक्षा और स्वावलंबन पर बल देकर लता शर्मा अपनी चिंता को स्थानीय और देशत मुद्दों पर केंद्रित करती हैं। चूंकि वे गुजरात से हैं, 2002 के दंगों में अल्पसंख्यक समाज की औरतों के साथ बरती गई नृशंसता की वे सब कहीं तीखी भर्सना करती हैं। इसमें हिंदुत्ववादी संगठनों की स्त्रियों की भूमिका को वे एक नई परिघटना के रूप में रेखांकित करती हैं। एक तरह से वे अपनी चिंता में उस हिंदुत्व का प्रतिपक्ष सामने रखती हैं जिसके एक प्रतिनिधि के रूप में प्रवीर तोगड़िया अल्पसंख्यकों, मुस्लिम और ईसाइयों को राहु और केतु घोषित कर चुके थे। इस तरह लता शर्मा संघ परिवार के एजेंडे के अंतर्गत लिखित कुसुम केडिया और रामेश्वर प्रसाद मिश्र की संयुक्त रूप से लिखित स्त्रीत्व धारणाएं एवं यथार्थ की हिंदुत्ववादी अवधारणाओं के विरुद्ध एक तर्क तैयार करती हैं। पौराणिक मृतकों के गौरवगान के विरुद्ध वे वर्तमान के यथार्थ का खुलासा करती हैं। वे उस गुजरात के सांप्रदायिक सच को तीखेपन से उठाती हैं जहाँ गाय का मांस खाना भले ही बुरी बात हो, औरत का मांस खाने में कोई आपत्ति नहीं है। 12 साल की नरगिस और सद्य विवाहिता नसीमा इसके करुण उदाहरण हैं। विकास की सारी योजनाओं, प्रचार और आंकड़ों के बीच वे नेताओं पर गहरा विश्वास जताती हैं। नेता हो जाने पर स्त्री का भी कोई लिंग नहीं होता, इसीलिए गुजरात में आयोजित स्त्री सशक्तिकरण की रैली में सुषमा स्वराज, उमा भारती और जयंती बेन पटेल की उपस्थिति को वे सब कहीं शंका और संदेह से देखती हैं। हिंदुत्व के नाम पर सती लक्ष्मी की उपस्थिति वस्तुतः एक वर्ग की सामाजिक स्वीकार्यता का ही उदाहरण है। दमित और उत्पीड़ित स्त्री को भोग्या से पूज्या बनाए जाने की विडंबना पर लेखिका की टिप्पणी है, शोकाकुल युवती हो या अधेड़ स्त्री, इससे पहले कि वह कुछ सोच समझ सके, स्थिर बुद्धि से कोई निर्णय ले सके, घर वाले घोषणा कर देते हैं कि उनकी बहू सती हो रही है। एक क्षण में दुनिया बदल जाती है। जिस स्त्री को कभी किसी ने भोग्या से अधिक नहीं समझा, वही स्त्री देवी बन जाती है। पूजा पाठ शुरू हो जाता है। छाछठ गांव वाले नारियल अगरबत्ती लेकर आ जुटते हैं। उम्र का भेदभाव भुला चरणों की धूल लेने लगते हैं। इस आकस्मिक गौरव का नशा भांग धतूरे के नशे से कहीं अधिक गहरा होता है। गौरव जिसका स्वाद उसने जीवन में पहली बार जाना है। वही पृष्ठ 92। सामंतवादी पुरुष और उपभोक्तावादी संस्कृति की लपटों में घिरी सती लक्ष्मी के रूप में प्रचारित प्रताड़ित स्त्री हमारे समय की एक दुखद सच्चाई है। समृद्ध परिवार की पढ़ी लिखी युवती नताशा सिंह और उसकी सखी ननद रितु सिंह की आत्महत्या का विकल्प लता शर्मा मरने की फुर्सत कहाँ शीर्षक टिप्पणी में बड़े और व्यापक स्त्री समाज से जुड़ाव में देखती हैं। पश्चिम से हम बहुत कुछ गलत सीखते हैं, लेकिन उस समाज सेवा और व्यक्तिगत निष्ठा जैसी चीज़ों की उपेक्षा करते हैं जिनसे जुड़कर वहाँ का युवा वर्ग अपने को सक्रिय और व्यस्त रखता है, कुछ रचनात्मक करने के संतोष के साथ। बहुत पहले कवि वर्जीनिया उर्फ ने स्त्री को स्त्री की तरह लिखने की सलाह दी थी। तब उनका आशय यही था कि स्त्री जीवन के जिन कोमल और अलक्षित पक्षों को स्त्री जितनी प्रामाणिकता से उद्घाटित कर सकती है, स्त्री के प्रति सारी सहानुभूत और एवं हार्दिकता के बावजूद कोई पुरुष लेखक नहीं कर सकता। लेकिन इसी आधार बनाकर जिंदगी नामा और महाभोज जैसी रचनाओं का अवमूल्यन नहीं किया जा सकता। सिर्फ यही तीखा सीखा जा सकता है कि बड़े फलक और जटिल अंतर्वस्तु वाली रचनाओं में भी स्त्री के संवेदन तंत्र के लिए कैसे जगह बनाई जा सकती है। आज नारीवाद के प्रसंग में इसे नए सिरे से उठाने वाली मैत्रेयी पुष्पा की अपनी नायिकाएं प्रेम और देह के स्तर पर पर्याप्त स्वतंत्र होने पर भी कहीं सामाजिक संदर्भों की उपेक्षा नहीं कर सकती। सामाजिक जड़ता के बीच ही वे अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हुए अपने विवेक से निर्णय लेती हैं, लेकिन उनके कुछ एक वक्तव्यों और व्यवहार से ने अनेक लेखिकाओं को जब तब उत्तेजित किया है। प्रतिक्रिया में ऐसी लेखिकाओं की एक बड़ी संख्या है जो घोषित करती हैं कि वे नारीवादी नहीं हैं। अपने लेख में अनामिका ने भले ही इस प्रसंग में पद्मा सचदेवा और कृष्णा शोवदी का ही उल्लेख किया हो, मृणाल पांडे, ममता कालिया, नासिरा शर्मा, सुधा अरोड़ा आज इसी अर्थ में अपने को नारीवादी आंदोलन से अलग और बाहर रखे जाने पर जोर देती हैं। मृणाल पांडे और नासिरा शर्मा स्त्री पर नारीवादी आंदोलन की सीमाओं से बाहर रहकर बृहत्तर सामाजिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में विचार करती हैं। उब्बीरी में मृणाल पांडे यदि स्त्री के स्वास्थ्य के विभिन्न पक्षों पर विचार करती हैं तो द सब्जेक्ट इज वुमन में स्त्री जीवन की विभिन्न समस्याओं और मुद्दों को उठाती हैं जहां औरतें गढ़ी जाती हैं में भी वे एक बड़े फलक पर भारतीय समाज में स्त्री की चिंता करती दिखाई देती हैं। पारसी थिएटर और आरंभिक भारतीय फिल्मों में जब पुरुष ही स्त्रियों की भूमिकाएँ करते थे, भारतीय स्त्री का रोल मॉडल तैयार किए जाने पर विशेष जोर दिया जाता था। समाज उन्हें आदर्श रूप में देखना चाहता था, लेकिन वे स्त्रियां अंदर कहीं कैसी उपेक्षित और बंधनों में जकड़ी जिंदगी जीने को अभिशप्त थीं। मृणाल पांडे इसके कुछ बहुत करुण और विडम्बनापूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। गौहर जान, माधुरी, जुवैदा, बनमाला, नाडिया आदि अभिनेत्रियां इस दोहरी और घुटन भरी जिंदगी के सिर्फ चंद उदाहरण हैं। नाडिया का आजाद ख्याल, मोहफटपन कभी नारीवादी छवि का एक आकर्षक तत्व था। वह चंद निर्देशकों या पटकथा लेखकों की शिष्य नहीं थी, वह एक बदलते सामाजिक यथार्थ की छवि थी, लेकिन बाहरी तौर पर निडर और उत्पीड़ित की त्राता के रूप में दिखने वाली ये अभिनेत्रियां अपने निजी जीवन में कितनी कमजोर और अकेली और उत्पीड़ित थीं। मृणाल पांडे ने विस्तार से इसकी चर्चा की है। शांता आप्टे, मीना कुमारी, परवीन बॉबी, प्रिया राजवंश आज इसी अकेलेपन और असुरक्षा की शिकार अभिनेत्रियां थीं। दबंग और त्राता छवि के बावजूद वे पुरुष वर्चस्व की शिकार अंदर कहीं बेहद अकेली, दुखी और निरीह स्त्रियां थीं। मृणाल पांडे महिला पत्रकारों से लेकर पंचायती राज में स्त्री की भूमिका, प्रजातंत्र में सती की उपस्थिति, स्त्री के संदर्भ में सामाजिक जड़ता के रूपों आदि पर पर्याप्त बेधक और व्यंग्यपूर्ण शैली में लिखती हैं। औरत होने का यह सच उनसे छिपा नहीं है जिसमें गाय बकरी की तरह दहेज से मढ़कर लड़की को स्वीकार बनाया जाता है। इस व्यापक समाज में सारी नारीवादी सक्रियता के बीच इस मुद्दे पर किसी आंदोलन की अनुपस्थिति उन्हें हताश करती है। नेताओं के भव्य समारोह, लालू जयललिता आदि के परिवारों में हुए राशि विवाह और इस प्रसंग में मीडिया की ठस और प्रतिगामी भूमिका उनमें खींच पैदा करती है। पिछले दिनों अभिषेक ऐश्वर्य के विवाह संबंधी खबरों का कवरेज इसी प्रवृत्ति के विस्तार का उदाहरण है। युवा वर्ग में सादगीपूर्ण गरिमा के संदेश और आचार के लिए जैसे कहीं कोई चिंता ही नहीं बची है। मृणाल पांडे की इस दृष्टि में नारीवादी आंदोलन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सारे शोर शराबे के बीच स्त्री उत्पाद में ढल और बदल रही है। सौंदर्य प्रतियोगिताओं का देह प्रदर्शन और उन्मुक्त निर्वाध भोगवाद स्त्री को सामाजिक सरोकारों एवं दायित्वों से काट रहा है। वे लिखती हैं, हमारे उदित भारत का मध्यवर्गीय समाज और उसकी महिलाएं आत्म केंद्रित और बृहत्तर सामाजिक सच्चाइयों की ओर जिस तेजी से लापरवाह होती जा रही हैं वह स्वस्थ नहीं है। आज की प्रौढ़ हो चली महिला नारीवादियों ने जब स्त्रियों को अपने और अपने जीवन पर अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन किया था तो इस इच्छा की उस आज़ादी का कांटा लगा। गर्ल की आक्रामक उच्छृंखलता और संयम आना रे कि हंटर वाले पुरुषों के प्रति हिकारत भरे स्वामित्व भाव में हो जाए जहां औरतें गढ़ी जाती हैं। पृष्ठ 62। स्त्री चिंता को वे एक बड़ा सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य इसकी उनकी माँ लेखिका शिवानी पालेखों से समझा जा सकता। माँ से अधिक वो परंपरा की स्वीकार्य सवाल बनकर सामने आती। नासिरा न सिर्फ अपने साहित्य में दावर औरतें गढ़ी हैं, विभिन्न देशों और समाजों की स्त्रियों उनकी समस्याओं को उन्होंने निकट से देखने समझने की कोशिश की है। ईरान की पृष्ठभूमि पर उन्होंने अनेक उल्लेख लिखी हैं। सात न एक समंदर जैसा से लेकर शामी कागज संगसार जैसी कहानी, लेकिन जब वे खुद को न माने जाने पर जोर देती हैं तो इसके कुछ वाजिब कारण हैं। एक साक्षात्कार में वे कहती हैं, मैं आधी नहीं पूरी दुनिया के बारे में लिखती हूँ। पश्चिम में नारी मुक्ति की विफलता पर टिप्पणी करते हुए वे कहती हैं, यह नारी मुक्ति की सफलता तब विफलता में बदलती है जब उस उदार समाज की नारी अवैध बच्चे को जन्म देती है। समाज उस बच्चे का तो अपने कंधों पर नहीं लेता, इसलिए ऐसे बच्चों के लिए संस्थाओं की व्यवस्था है, मगर उस नारी को वह स्वतः उस समाज ने प्रदान नहीं की कि वह उस अव के साथ जी सके और आवश्यकता के हर जरूरी फार्म पर पिता के नाम का स्थान खाली न हो, लेकिन वास्तव में छपे ही नहीं। तब हुई सही सेक्स क्रांति, मगर ऐसा वहाँ भी नहीं हुआ। औरतों के लिए औरत पृष्ठ 125। पूर्व में औरत देवी के रूप में पत्थर है तो पश्चिम में लोहा, व्यवस्था के बड़े यंत्र के एक पुर्जे के रूप में, इसी के विरुद्ध वे वस्तुतः एक लेखक के रूप में हार मास की सजग और संवेदनशील स्त्री के निर्माण एवं विकास पर जोर देती हैं। हिंदी में देह की मुक्ति को ही नारीवाद का मूल और एकमात्र सूत्र माने जाने का विरोध और अनेक लेखिकाओं की तरह वे भी करती हैं, लेकिन तब थोड़ा होता है जब वे प्रभा खेतान के छिन्न मस्ता टिप्पणी करते हुए जिन्हें स्त्री से हमदर्दी उन्हें छिन्न मस्ता को पसंद नहीं किए। आखिरकार आज का नैतिक प्रतीक होती है मारल होती है वही पृष्ठ 105। वस्तुतः वे नारीवाद के विरुद्ध अपनाती हैं। यही वेरी बात को पुरुष के विरुद्ध आने वाली लड़ाई के रूप में परिभाषित करने लगती हैं, जबकि और हमेशा यह कहा है कि यह लड़ाई पुरुष के नहीं पुरुष सत्ता के वर्चस्व के विरुद्ध वह सदियों से स्त्री पीड़न का मुख्य कारक रही है। वे कथित रूप से फैशनेबल और सजावटी नारीवाद पर हमला करती हैं जो सिर्फ चर्चा में बने रहने का एक शगल है। सम्मान और पुरस्कार के लिए वे लेखिकाओं की जोड़ तोड़ का उल्लेख भी करती हैं। वे समाज में ऐसे कानूनों के बनाए जाने और उन पर अमल के पक्ष में हैं जो स्त्री हितों की रक्षा करते हों। इराक में स्त्रियों के बीच सद्दाम हुसैन के बेहिसाब लोकप्रियता के कारणों की ओर संकेत करते हुए वे बताती हैं कि उन्होंने जो कानून बनाए उनमें तलाक के बाद घर औरत नहीं आदमी छोड़ेगा और घर की कोई चीज़ वह अपने साथ नहीं ले जाएगा। छोटे बच्चों वाली औरतें सिर्फ आधा दिन नौकरी करके पूरा वेतन पाती थीं ताकि बचा हुआ समय वे अपने घर और बच्चों की जरूरतों को दे सकें। औरत का तबादला नहीं किया जाएगा जहां उसका पति होगा। इन कानूनों से इराक में तलाक का प्रतिशत स्वाभाविक रूप में कम हुआ क्योंकि तनाव की स्थिति बनाने वाले पारिवारिक सामाजिक एवं कार्यक्षेत्र के वातावरण को सहज बनाने में सरकार की सकारात्मक भूमिका रही है। नारीवादी वन पेरेंट पर फिर घर परिवार जैसी संस्थाओं का विघटन उन्हें सोचने को मजबूर करता है। इसीलिए वे हिंदी की उन लेखिकाओं का उल्लेख किंचित विद्रूप की भाषा में करती हैं जो घर परिवार बच्चों और पति की सारी सुविधाएं उठाते हुए नारीवाद का परचम लहराती हैं। वह अभी पितृसत्ता के विरोध के नाम पर। नासिरा शर्मा का मानना है कि नारी जागृति नारी की मानसिकता में ही निहित है। पिछले 5000 सालों में मर्द का व्यक्तित्व उतना नहीं बदला है जितना औरत का। वह बदलाव ही वस्तुतः सामाजिक चेतना को प्रेरित करता है। मर्द और औरत समाज की दो इकाइयां हैं, दोनों शोषित हैं। मर्द कुछ कम, औरत कुछ ज़्यादा। प्रेम जीवन का स्रोत तो हो सकता है, केंद्र नहीं होता। आज मंजिल केवल मर्द नहीं है। पश्चिम में औरत आगे बढ़ी है, लेकिन उसका लक्ष्य मर्द बनना है। पश्चिम में भी पीढ़ी के साये में एक नया औरत वर्ग उभर रहा है जो जागृति, आत्मविश्वास, स्वावलंबन और दान बलिदान की राह पर चलने लगा है। हमारी पुरानी पौराणिक ऐतिहासिक स्त्रियों की महत्वाकांक्षाएं मुख्यतः पति, परिवार और निजी इच्छाओं पर केंद्रित थीं। आज की सचेत और जागरूक औरत परिवार से जुड़कर समाज के लिए आत्मक करना चाहती है। किसी औरत का साथी उसकी इच्छा के विरुद्ध घर तोड़ता है तो उसमें इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि घर टूटने को वह व्यक्तित्व के टूटने के रूप में लेने से बच सके। बलात्कार और दहेज के प्रसंग में समाज को बदलने की जरूरत है। खतरनाक स्थितियों के विरुद्ध हस्तक्षेप के रूप में उन मर्दों का सहयोग लिया जाना जो स्वयं मर्दों की इन के विरुद्ध हैं। क्रिया और प्रतिहिंसा से निर्माण नहीं होता। पुरुष के नाम पर स्त्री में बदले की प्रवृत्ति को उसी तरह गलत मानती है जैसे हिंदुत्ववादी इतिहास का बदला लेकर आज की सामाजिक समरसता को भंग करते हैं, या फिर दलित आंदोलन की उग्रता में पिछड़ी यंत्रणा और उत्पीड़न से मुक्ति तलाशी आती है। अनामिका भी मानती है कि विमेंस लिव पुरुष के नहीं पितृसत्ता के विरुद्ध हैं। वे भी उन लेखिकाओं में हैं जो घर परिवार के बीच पितृसत्ता का विरोध करती हैं और सिमोन द बोबुआर की तरह विवाह और परिवार का विरोध न करने पर भी कम्यून व्यवस्था का समर्थन करती हैं। मिथकीय पात्रों सीता, सावित्री, शूर्पणखा, लक्ष्मण आदि की परिवर्तित युगानुकूल व्याख्या करके बहुत कुछ नवनीता सेन गुप्ता की सीता से शुरू की तर्ज पर वे परंपरा के खड़यंत्रों का खुलासा करती हैं। स्त्री के चुप सहने की नीति को वे मैकाले की दिशा नीति से जोड़कर देखती हैं। ऐसा कुछ करने की नीति जो तेज को कुंठित करने में सफल होती है। अनामिका पोस्ट फेमिनिज्म के बहाने नारीवाद को विस्तार देती हैं। जर्मन ग्रियर और एंड्रीज रिच अपनी भौगोलिक सीमाओं से बाहर निकलकर अब तीसरी दुनिया की जमीनी संघर्ष करती स्त्री की ओर मुड़ती हैं। अफ्रीकी वुमनिज्म से लेकर अपने अधिकारों और संघर्ष के प्रति सजग भारतीय आदिवासी स्त्री तक उसमें शामिल हैं। पूरी दुनिया की स्त्रियां मार्स के मजदूरों वाले आह्वान की तरह अब बनापे और आपसी समझदारी के सूत्र से जुड़ने लगी हैं। पुअर लीजा कॉम्प्लेक्स से मुक्त होकर अब पूरी दुनिया इसमें समा गई है। तीसरी के आगे जैसी यह चौथी दुनिया है, अपने अस्तित्व को प्रमाणित करती। दुनिया भर में स्त्री और स्त्री के बीच विकसित इस सद्भाव और बहुत कुछ साझा समस्याओं की दृष्टि से अनामिका कैनेडियन कवयित्री मासी रेंडन की एक कविता प्रस्तुत करती हैं। ईसा मसीह औरत नहीं थे, वरना मासिक धर्म 12 मास की उम्र से उनको मंदिर से बाहर रखता। बेथलहेम और यरूशलम के बीच के कठिन सफर में उनके हो जाते कई तो बलात्कार और उनके दुदमुहे बच्चे 40 दिन और 40 रातें भूख से बिलबिला कर मरते हुए कटते, जब उनको तो फुर्सत मिलती ही नहीं सूली पर चढ़ जाने की भी। मन मांझने की जरूरत, पृष्ठ 42। नारीवाद को विस्तार देने की प्रक्रिया में अनामिका यदि एक और मिथकीय पात्रों की नई व्याख्या करती हैं, वहीं वे लोक साहित्य में निहित और पल्लवित आशयों के नारीवादी उपयोग की संभावनाएं भी तलाशती हैं। भिखारी ठाकुर के एक नाटक गबर घिचोड़ में बुढ़िया द्वारा पड़ोसी की छत पर पौड़ गई लौकी वाले उदाहरण को वे एक कसौटी की तरह सामने रखती हैं। स्त्री आंदोलन को परिभाषित करती हुई वे लिखती हैं, जो जहाँ भी परितप्त है स्त्री आंदोलन से जुड़ जाता है। राबिया फकीर और सूफी गायकी नामक अपनी टिप्पणी में वे इस विस्तार को रेखांकित करती हैं। यह स्त्री मुक्ति की आकांक्षा से अधिक कुछ है, जिसमें दलित, उपेक्षित, अनादृत, बूढ़े, विकलांग, अश्वेत, अल्पसंख्यक, पर्यावरण और सांप्रदायिक सद्भाव की चिंता तक सब कुछ समा जाता है। काली फॉर विमेन की हैदराबाद में आयोजित कार्यशाला के बाद हवाई अड्डे पर इत्र के बड़े और खोखले मर्तबान के साथ जो अजीत कौर ने अपनी चित्रकार बेटी अपर्णा के लिए खरीदा था, बम के गोले जैसी कुछ खतरनाक चीज समझी जाकर हवाई अड्डे के अधिकारियों का जो सुलूक था, अनामिका उसमें निहित हिकारत और अज्ञान को स्त्री साहित्य और आंदोलन के प्रति बरती जाने वाली बेअदबी और उपेक्षा से जोड़कर देखती है। कविता में औरत में अपनी टिप्पणियों के साथ वे औरत की वेदना और स्थिति को सामने लाती हैं। इनमें वह कविता भी शामिल है जिसमें छाता बनाने वाले की पत्नी पति से शिकायत के रूप में उलाहना देती है कि उसका पति उसे उतना महत्व भी नहीं देता जितना अपने बनाए छाते को देता है। अनामिका नारीवाद को इसी सर्वव्यापी और सार्वभौम पीड़ा से जोड़कर देखती है, जिसमें स्त्री की मुक्ति की आकांक्षा सब कहीं एक नियोजक सूत्र और कारक हैं। सामयिक टिप्पणियों और बहुत कुछ तात्कालिक रणनीति के तहत प्रस्तुत स्त्री चिंता की यह वैचारिकी वस्तुतः स्त्री की नियत और उसकी मुक्ति की आकांक्षा पूरी तरह समझ पाने में अक्षम है। यह मुख्यतः उन लेखिकाओं द्वारा ही प्रस्तुत है जो रचनात्मक लेखन में भी सक्रिय हैं। नारीवाद की मूल प्रकृति और स्त्री मुक्ति की उनकी आकांक्षा को उनके अपने साहित्य को छोड़कर नहीं समझा जा सकता। इसमें उन कारणों की अनदेखी भी नहीं की जा सकती कि आखिर महिला लेखकों का एक बड़ा और गंभीर वर्ग क्यों अपने को नारीवाद से अलग और बाहर रखे जाने पर जोर देता है। साहित्य में प्रायोजित मूल्यांकन और उपभोग की राजनीति के इस दौर में यह चिंता भी नारीवाद के ही दायरे ही आती है कि आखिर क्यों मन्नू भंडारी की एक कहानी यह भी विधिवत रिलीज होने के पूर्व ही हंस में प्रायोजित मूल्यांकन का एक उदाहरण बनती है और स्त्रियां ही स्त्री के लंबे और क्रूर उत्पीड़न की चिंता किए बिना संपादक के पक्ष में खड़ी होती हैं। बहनापे और भगनीवाद की दुहाई के बावजूद पुरुष वर्चस्व और पितृसत्ता द्वारा अपने मन चाहे इस्तेमाल की छूट देने वाला यह नारीवाद कहाँ जाएगा, इस पर गंभीरता से विचार किए जाने की जरूरत है। तीसरी और चौथी दुनिया से जुड़ने की बात करके अपनी नाक के नीचे होने वाले उत्पीड़न और अन्याय की अनदेखी करके या फिर अन्यायी और उत्पीड़न के पक्ष में खड़े होकर हम आखिर किस नारीवाद के विकास की बात करते हैं। ऐसे उदाहरण ही वस्तुतः अनेक लेखिकाओं के नारीवाद से अलगाव वाले तर्क को बल देते हैं।